Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Uske nas nikal le usi ka tum tar bana le. Tar ban gaya. वीणा बन गए बस, और बाकी जो हाथ हैं 18 हाथ तो फिर भी बचेंगे कि नहीं है? तो स्तोत्र गा और तानपुरा राग अलापते रहो, देख ले फिर तो ये संकट से मुक्त होगा कि नहीं। अच्छा, सच्ची बात बोले। हाँ, प्रयोग करके देख ले। उसने किया, रावण तो हठयोगी था, वो कुछ भी आटेगा, वो निश्चय करे तो कुछ भी करने को तैयार है। तो उसने उठा निकाल लिया, एक सिर को अलग किया, एक बाहू को अलग किया, जोड़ लिया और एक हाथ से नसें निकाल ली, अंगुलियां निकाल ली, जोड़ दिया, तानपुरा बन गया और गाना शुरू कर दिया। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन निलिंप निर्जरी मिलोल चिवल्लरी विराजमान मूर्ध्वनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षण मम तराधरेन्द्र नंदिनी। इस तरह जब उसने शिव स्तोत्रों की रचना करते हुए दिव्य स्वर सहित बाजा के सहित जब गान करने लगा, तब भगवान शिव के कान में वो स्वर पहुंच गया। कान में, भगवान शिव के कान में जब पहुंच गया तो शिव जी से रहा नहीं गया। वो तो नटराज हैं, भगवान शिव तो नटराज है, और कोई स्वर मिलाकर मधुर संगीत से गान करने लग जाए और नाचना जानने वाला चुपचाप बैठ जाए, संभव ही नहीं है, है? संभव ही नहीं है। तो भगवान शिव ये भूल गए कि रावण को दंड देने के लिए कैलाश को मैंने दबा के रखा है, ये बात भूल गए और उसी कैलाश में वो नाचने लग गए। रावण गाने शुरू कर दिया और शिव जी नाचने लग गए। अब देखो, हम देखते हैं कभी कभी तो कोई माताएं जो मोटे मोटे शरीर वाले भी होती हैं, तो वह भी कई बढ़िया संगीत होता है, नाच गान का प्रसंग होता है, तो हमको लगता है इतनी मोटी कैसे नाचेगी, लेकिन इतनी हल्के से नाच जाती है, इतनी हल्की से उसके कदम चलते हैं कि मानो कि उसके कदम जमीन को छो ही नहीं रही है, इतना हल्का हो, उसके शरीर के भारीपना कहां गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, इतनी कलात्मक ढंग से नाचने लग जाती है। इसी तरह भगवान शिव भी तांडव स्तोत्र के साथ और गान के साथ नाचने लग गए, तो इस बात को भूल गए कि कैलाश को दबाकर रावण को मैं दंडित कर रहा हूं, तो पूरा कैलाश हल्का हो गया, रावण निकल गया, जो दबा हुआ था वहां से निकल गया। निकल गया तो खड़े होकर हाथ जोड़कर जय हो भगवान जय हो प्रार्थना करता है। रावण, भगवान शिव ने देखा, अरे तू कहां से निकल के आया, कैसे निकल के आया? महाराज, आपकी बहुत कृपा हो गई है, आप नाचने लग गए कि पर्वत हल्का हो गया और बस मैं निकल आया। मैं नाचने क्यों लगा? बोले क्योंकि हमने गा दिया। तो भगवान शिव गान से भी बहुत प्रसन्न होते हैं, स्वरों से गाई है तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहां लगभग शंकराचार्य जी महाराज शिव जी के बारे में वही भाव व्यक्त कर रहे हैं। तवेरर्थादि तवेश ब्रह्मादीनाम, ब्रह्मादियों ने आपकी बड़ी सुंदर सुंदर काव्यात्मक पदों के द्वारा आपकी स्तुति गान की है। जय जय बचो वीर नियमिनाम, और बड़े बड़े नियमी, नियमी माने योगी, यम नियम में नित्य रत हैं, साधना में लगे हुए हैं, अष्टांग योग मान लो या कोई भी मान लो, नियमिन शब्द का अर्थ होता है योगी। बड़े बड़े योगियों ने भी आपके स्तुति गान करते हुए आपके सस्वर एक स्वर से जय जयकार किया है। स्तवेर ब्रह्मादीनाम जय जय बचो वीर नियमिनाम गणानाम केली वीर। तो आप जब कैलाश में विद्यमान रहते हैं तो अपने प्रमथ गणों के साथ आप कभी कभी नृत्य भी करते हैं, है? जब हैप्पी बर्थडे होता है तो हमारे बच्चे जब हमारे नाम का केक ले आते हैं और काटते हैं और मोमबत्ती जलाकर फूंकते हैं, और जब बच्चे एक स्वर से नाती पोते बेटा बहू बेटी जवाई सब एक कर एक स्वर से हैप्पी बर्थडे पापा करते हुए गाते हुए ताली बजाते हुए गाने लग जाते हैं, नाचने लगते हैं, तो बूढ़ा व्यक्ति भी 80 साल का बूढ़ा भी उन नाती पोतों के साथ ठुमके मारने लग जाता है, लगते है कि नहीं बोलो? आओ पापा आप भी नाचो, आओ मम्मी तुम भी नाचो, अरे बेटा बूढ़ा हो गया, नहीं 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 नाचो आओ आज तो आनंद का हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, देव जी सब नाचने लगते हैं तो बूढ़ा भी नाचने लगता है। इसी तरह अपने ही बच्चों के साथ हम बूढ़े भी कभी कभी नाचा करते हैं कि नहीं? इसी तरह भगवान शिव भी कभी कभी कैलाश में अपने प्रमथ गणों के साथ नाचा करते हैं। क्यों नाचते हैं? कि हैप्पी बर्थडे मनाते हैं भगवान शिव की। देखो शिव जी का हैप्पी बर्थडे तो है ही नहीं, क्योंकि उसके मां बाप का पता ही नहीं है तो कहां से हैप्पी बर्थडे होगा? आप लोगों को पता है कृष्ण के जन्माष्टमी आप मनाते हो, राम की रामनवमी मनाते हो, किस लिए न मनाते हो रामनवमी? तो राम का जन्मदिन है, क्योंकि राम के मां बाप का आपको पता है कि नहीं? राम के मां बाप का नाम पता है कि नहीं आपको? दशरथ कौशल्या। और कृष्ण के मां बाप का भी पता है आपको, है ना? कौन है? देवकी वसुदेव है, इसलिए अब जन्म के बारे में सब जगह वर्णन है और तिथि मिति सब पता है, इसलिए हम जन्माष्टमी भी मना लेते हैं, कृष्ण राम नवमी भी मना लेते हैं, राम का जन्म भी मना लेते हैं, कृष्ण का जन्म मना। शिव जी का जन्म कब मनाएं? तो आप लोग कहोगे कि शिवरात्रि, लेकिन शिवरात्रि यदि शिव जी का जन्म है तो तुम्हें यह बताना जरूरी है कि मां बाप भी बताना पड़ेगा, तभी शिवरात्रि शिव का जन्म होगा। बताओ मां बाप कौन है? है बताओ? नहीं है तो फिर कैसे शिवरात्रि को शिव जी का जन्म मानते हो? है? हाँ तो फिर मां बाप प्रकट तो ऐसे भी हो जाते हैं, प्रकट तो देखो मैं बताऊं, हीनो उपमा देता हूं तुम्हें, जब तुम्हारे शरीर में पसीने आते हैं और वो पसीने जब तुम रात को सोए हुए हो और तुम्हारे चद्दर और तकिए के कपड़ों में पसीने गिर जाते हैं और तुमने आलस्य की और महीनों भर तुमने उसको धोया नहीं और रोज रोज पसीने उसमें गिरते गए, तब वहां क्या पैदा होंगे पता है? खटमल। ये तो आपको पता है ना, तो खटमल का बर्थडे मनाओ, क्योंकि तुम मां बाप हो खटमल के, है? हो कि नहीं बोलो? प्रमाण सिद्ध हुआ कि नहीं? वो खटमल के जन्म का कारण कौन हुआ बोलो रे? उस खटमल के जन्म का कारण कौन हुआ? तुम हो गए कि नहीं? तो तुम मां बाप हो गए तो बर्थडे मनाओ खटमलों की, हैप्पी बर्थडे टू यू खटमल करो फिर, है? क्या ये संभव है? तो वह उसके जन्म का कारण मानेंगे, वो प्रकट हो गए, वो पैदा हो गए बिना कारण के, बिना कारण तो कैसे कहे, क्योंकि कारण के बिना कार्य होता नहीं है, इसलिए तुम्हारे पसीना ही उनकी उत्पत्ति का कारण हो गया। शिव जी की उत्पत्ति का कारण क्या मानेंगे? इसलिए शिव जी प्राकट्य हो गए, इसलिए शिवरात्रि को शिव जन्म नहीं मनाते हैं, कहीं भी लिखा नहीं है शिव जन्म, शिव प्राकट्य उत्सव। तो गणानाम के लिए भी तो ब्रह्मा आदि स्तुति गान करने लगते हैं और नियमिन योगी लोग जब जय जयकार करने लगते हैं कैलाश में पहुंचकर, ये कैलाश का वातावरण है, हो ये सब कैलाश में हो रहा है। कैलाश के जी दृश्य का शंकराचार्य जी ने यहां चित्रण किया है, और उसी समय में वहां भगवान शिव के जो गण हैं, प्रमथ आदि गण, नंदी वृंदी आदि, नंदी वृंगी नृत्य करता है, मारवाड़ियों में ये भगवान शिव की आरती बहुत प्रसिद्ध है, और ये आरती हमारे दिल्ली संन्यास आश्रम में नियमित गाई जाती है, क्योंकि हमारे गुरु दोनों ही, गुरु के गुरु भी राजस्थान से संबंधित थे, दादा गुरु, और हमारे गुरुजी भी राजस्थान से ही संबंधित थे, और वही परंपरा फिर राजस्थानियों में वो शिव जी की जो आरती है, नंदी वृंगी नृत्य करता है, तो ये आरती। हम वहां गए गुवाहाटी, तो आसाम गुवाहाटी गए, तो ब्रह्मपुत्र के किनारे में शिव मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, तो सुबह हम जल चढ़ाने प्रार्थना करने के लिए गए, तो दिल्ली आश्रम में रहते हुए ये आरती हम लोग नियमित गाते थे, तो वहां पहुंचे तो वहां पर भी सब मारवाड़ी लोग, व्यापारी, गुवाहाटी में बहुत है मारवाड़ी, वो लोग आकर सुबह शिव जी के आरती गाने लगे, तो यही नंदी वृंदी नृत्य करता है, तो ये आरती गाने लगे, तो हमको ऐसा भ्रांति हो गई, ये दिल्ली संन्यास आश्रम के भक्त लोग यहां आ गए क्या। बाद में पता चला तुम कहां के हो, क्या हो, तो कहां वहीं के हैं, लेकिन इतनी व्यापक है। काठमांडू में भी पशुपतिनाथ में कभी कभी जाते हैं, मारवाड़ी लोग पहुंचते हैं तो यही आरती गाते हैं। तो कैलाश में जब इस तरह ब्रह्मा आदि स्तुति और योगी आदि जब जय जयकार करने लगते हैं, तो भगवान शिव के जो प्रमथ गण नंदी भृंगे आदि हैं, वे सब के लिए वीर नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तब उस वातावरण को देखकर मदकल महोक्षस्य ककुदी, उस संगीतमय मद में मस्त हुआ हुआ नंदी भी नाचने लग जाता है। बोलो, नंदी भी नाचने लग। तो अब उसी समय में भगवान शिव को कहीं जाना था तो नंदी के ऊपर चढ़े थे, अब नंदी खुद उस वातावरण में नाचने लग गया, तो भगवान शिव का क्या हाल हुआ होगा विचार करो। ककुदी, ककुदी माने नंदी के ऊपर का जो उठा हुआ भाग है पृष्ठ में, उसको ककुदी संस्कृत भाषा में कहते हैं। कैसा है वो नंदी? महोक्ष, मोक्ष माने नंदी, महोक्ष माने नंदी। भगवान शिव नित्य निरंतर नंदी में सवार करते हैं। भगवान शिव का वाहन नंदी है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। पुष्पदंताचार्य जी ने भी वर्णन किया है भगवान शिव की संपत्ति का, वैभव का, एक श्लोक में सब उल्लेख कर दिया है। महोक्ष खट्वांगम परसुरजिनम भस्म फणिन कपालम चेतीयत तव वरद तंत्रोपकरणम। हे वरदा, सबको देने वाले, वरदा माने वरम श्रेष्ठम ददाति इति वरदा, सबको बढ़िया बढ़िया वस्तु देने वाले व्यक्ति आप, तो आपके पास तो इससे भी और बढ़िया वस्तु होगा है? कुबेर को देवताओं के खजाना दिया किसने है? शंकर भगवान ने। इंद्र को ये स्वर्ग का साम्राज्य दिया किसने? भगवान शिव ने। पुराणों में पढ़ गया, भगवान शिव की कृपा से ही इंद्र को साम्राज्य प्राप्त हुआ, स्वर्ग का साम्राज्य, और भगवान शिव के प्रसाद से ही, कृपा से ही गंधर्व वह कुबेर पद में आसीन हो पाया। अब कुबेर के खजाना में क्या नहीं है बोलो? दुनिया में बढ़िया से बढ़िया सब चीज कुबेर के खजाने में है, और इतना बढ़िया सा बढ़िया खजाना कुबेर को देने वाले भगवान शिव, वो अपने पास तो उससे भी और बढ़िया बढ़िया चीज रखा होगा है ना। पुष्पदंताचार्य कहते हैं, यदि ऐसा कोई सोचता हो कि शिव जी के पास तो और भी बढ़िया चीज होगा, तब इंद्र को स्वर्ग दिया तो स्वर्ग में रहने वाला अमृत भी इंद्र को दिया कि नहीं, बोलिए। अब तो अमृत सो इंद्र को दिया तो भगवान शिव ने तो उस अमृत का भी और अमृत रखा होगा, तो जाके खोजने लगा तो सरस विष मिला। देख लो उन्होंने अपने पास क्या रखा, अमृत देवताओं को दिया और अपने पास विष रखा, और स्वर्ग का खजाना कुबेर को दिया तो अपने पास क्या रखा, ऐरावत हाथी इंद्र को दिया, उच्च स्रव घोड़ा, क्या सब कुछ दिया, सभी को लक्ष्मी विष्णु को दिया, दिया कि नहीं, सब दे दिया, बांट दिया, और अपने पास क्या रखा, बूढ़ा बैल, ऐरावत हाथी और उच्च स्रव घोड़ा। मैं विषपान तब करूंगा जब ऐरावत हाथी और उच्च स्रव मुझे दोगे तब, एक कंडीशन रखा होता तो इंद्र आदि देवता राजी होते कि नहीं शिवजी को देने में, क्योंकि इधर विष से जले जा रहे थे, है? अकांड ब्रह्मांड छह चकित देवासुर कृपा, बिना समय में सारा पृथ्वी प्रलय होने जा रहा था, और उस भयावह जहर विष की अग्नियों से लपेट में देवता मनुष्य गंधर्व यक्ष सब उस चपेटे में आए जा रहे थे, और सब एक स्वर से शिवजी की प्रार्थना कर रहे थे कि त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रार्थना कर रहे थे। भगवान प्रकट हो गए और पूछा क्या बात है, बोले देखिए अमृत के लिए हमने समुद्र मंथन किया, निकल गया जहर और ये सब जलाया जा रहा है, बिना समय में प्रलय करने जा रहा है ये विष, क्या करें। बोले इससे क्या हुआ, बोले अमृत निकला था कौन ले गया, वो स्वर्ग में चला गया, वो देवता इंद्र ले गया, घोड़ा ले गया, ऐरावत हाथी ले गया, उच्च स्रव घोड़ा ले गया, सब चले गए, अब इस विष का क्या करें। बोले किसी की और किसी की हिम्मत नहीं हो रही इसका समन करने का, बोले आप ही कृपा करो महाराज। तो वो उस समय में कंडीशन रखते कि उच्च स्रवा हाथी मुझे दे दो, क्योंकि मुझे कैलाश में चढ़नी है, तो मैं होता तो कह देता महाराज हाथी पहाड़ में नहीं चढ़ सकता इतना मोटा है, है? तो भगवान शिव मान जाते, किसी ने कह दिया होगा सब मान गए होंगे, तब कहा कि पहाड़ चढ़ने में तो समर्थ क्या है, बड़द है, इसीलिए आप लोग में हमारे चिमन भाई सोलंकी जी कैलाश जाके आए, हमारी उमा जाके आई है, हमारे साथ ही गई थी उमा, तो आप लोगों ने कैलाश में परिक्रमा में देखा होगा याक का प्रयोग होता है, वह याक माने गाय की ही एक प्रजाति है, वो गाय की ही एक प्रजाति है वो याक, और वो इतने ताकतवर होते हैं कि वाह हमको तो अपने खाली शरीर भी लेकर पहाड़ चढ़ना मुश्किल होता है, और वे याक इतने 50-50, 60-60 किलो वजन अपने पीठ में लेते हैं और बस एक जोर से श्वास खींच लेता है और कुंभक कर लेता है, और उसके बाद फटाफट फटाफट दौड़ के ऊपर जाकर खड़ा होता है और जोर से श्वास रेचक करता है। हाँ वो सब पूर्व जन्म के योगी थे वो, हाँ नहीं तो उनको मैंने देखा है, उसने जोर से श्वास खींचा, मैं तो 3 बार कैलाश परिक्रमा कर चुका हूं ना, तो मैंने देखा है जब चढ़ाई करने शुरू करता है तो जोर से श्वास खींचता है और उस श्वास को कुंभक करता है, रोक लेता है, और उसके बाद दौड़ता है फटाफट 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 दौड़ता है और ऊपर पहुंचता है, फिर खड़े होता है और पूरा श्वास को लंबे श्वास छोड़ता है, और 2-4 बार इस तरह रेचक पूरक करता है, फिर जब उसको चलना होता है तो पूरी तरह लंबे समय से पूरक करता है, उसके बाद कुंभक करता है और दौड़ पड़ता है, दौड़ते समय कुंभक करता है, फिर जब वो आगे पहुंचता है तो फिर रेचन कर देता है। तो याक बहुत तगड़े है, देवताओं को पता रहा होगा, इसलिए पहाड़ चढ़ने में तो गोत्र तो जाति विशिष्ट पशु ही समर्थ है महाराज, इसलिए आप बहल ही रखो, ऐरावत हाथी की कामना मत करो। तो महोक्ष खटवांगम टूटा हुआ खाट है, परसु टूटा हुआ फरसा, मवच खटवांगम परसु अजिनम दंती त्वकृत सुंदराम भरधरे। अजिन मने दंती त्वक, बागंबर हाथी की छाला। प्रार्थना मंत्र में सुनते हो कि नहीं, दंती त्वकृत सुंदराम भरधरे त्रैलोक के सहारे हरे मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचलाम अन्येष्टु किम कर्म भी। अरे मुमुक्षु हो, अन्य कर्मों के आश्रय क्यों लेते हो? तुम्हारे कल्याण के लिए तो दंती त्वक जिसने लपेट रखा है, हाथी की चमड़ी जिसने अपने बढ़िया वस्त्र के रूप में, आगे श्लोक आएगा। सूर्य भगवान शिव के क्या काम करते हैं? तो बोले उनके कपड़े सुखाने का काम करते हैं। आगे आएगा श्लोक में, भगवान सूर्य क्या काम करते हैं बोलो है? भगवान शिव के कपड़ा सुखाने का काम करते हैं। कहीं हाथी मरा हुआ था तो फरसा तो उनके हाथ में था ही, उन्होंने मरे हुए हाथी की चमड़ी निकाल ली, तो वो चमड़ी तो अब गीली है, अब उसको सुखाएगा कौन? तो भगवान शिव ने कहा कि हे सूर्य, मेरे कपड़ा सुखाने का काम तू कर। तो भगवान सूर्य हमेशा शिव जी के कपड़े सुखाने का ही काम करते हैं। आगे श्लोक में आएगा, भगवान शंकराचार्य जी उस प्रसंग को भी यहां अपने श्लोकों में समावेश करते हैं। केली भी ही तो महोक्ष परसु अजिनम भस्म, राख भी थोड़ा सा रख लेते हैं, फणिना सर पर रख लेते हैं, कपालम मरे हुए मनुष्यों की खोपड़ी रख लेते हैं। च इति इयत, हे शिव यही सात वस्तु तुम्हारे पास है। ये सात वस्तु यहां महोक्ष खटवांग परसु अजिनम भस्म फणिना कपालम, ये सात वस्तु है। इति इयम, केवल ये गिनती में है आपके पास जो सामग्री है वो भी क्यों रखा है? क्योंकि आप गृहस्थी हैं और अपनी गृहस्थी चलाने के लिए आपने ये रखा है। तंत्रोपकरणम, तंत्र शब्द का अर्थ होता है कौटुंबम, कुटुंब। आपके कुटुंब है, पार्वती साथ में है, गणेश और कार्तिक है, और उनके लिए भी गृहस्थी चलानी है, इसीलिए आपको गृहस्थी चलाने के लिए इतनी सामग्री अपने अपने पास रखा है। और शायद ये गृहस्थी आपके पास न होती, एक पत्नी और दो बेटे आपके पास न होते, आप अकेले होते, तो शायद ये सात वस्तु भी वो अपने पास न रखते। ये सारे वस्तु अपने पास रखा किसने? बरद, बढ़िया सा बढ़िया। वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। वरम श्रेष्ठम ददाति इति वरद, बढ़िया बढ़िया वस्तु सब दूसरों को दे देते हैं, और सब लोगों ने जो छोड़ा है किसी के काम ना लगे उसी को लेकर भगवान शिव अपनी गृहस्थी का गुजारा कर लेते हैं। गणानाम केली भीर मदकल महोक्षस्य ककुदी, तो बूढ़ा बैल रखा। भागवत में बैल को धर्म का प्रतीक माना है ना, है ना? पृथ्वी और नंदी के संवाद में है, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके खड़ी है और नंदी बैल धर्म बैल का रूप लेकर खड़ा हुआ है। परीक्षित जब घूमे अपने साम्राज्य का अवलोकन करने के लिए, तो उन्होंने एक गाय और एक बैल आपस में संवाद करते हुए देखा। क्या संवाद कर रहे हैं वो दूर से उसने परीक्षित ने सुना, सुनते उसको आश्चर्य लगा और नजदीक जाकर पूछा कि तुम लोग कौन हो? गाय और बैल दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन तुम बात तो बड़े तत्व की बात कर रहे हो, तुम रो रही हो और तुम बड़े दुखी हो, और तुम्हारे तीन पांव तो किसने काट लिया है? एक ही पांव में तुम खड़े हो, कैसे तुम एक पांव में खड़े हो? तुम कौन हो? तुम साधारण बैल तो नहीं हो, पशु तो नहीं हो, बोलो तुम अपना परिचय दो। परीक्षित ने जब पूछा तो उस बैल ने अपना परिचय धर्म के रूप में दिया। बोले ये तीन पांव कहां गए तुम्हारे? बोले कली ने काट दिया, तोड़ दिया है। और ये चौथा भी तोड़ने की वह कोशिश कर रहा है, चेष्टा कर रहा है ना, चौथा भी तोड़ने की वो कोशिश कर रहा है, लात मार रहा है, एक ही पांव से खड़ा हूं फिर भी वो लात मार रहा है। और पृथ्वी रो रही है कि मैं पृथ्वी हूं, पाप के बोझों से मैं दबी जा रही हूं, मुझे ये असह्य हुआ जा रहा है, लेकिन करें क्या, कोई उपाय तो है नहीं। तो सुना है कि कृष्ण का आविर्भाव होगा तब ये पाप कुछ कम होंगे, तब मेरा बोझा कम होगा। उसी प्रतीक्षा में पृथ्वी में बैठी हूं कि कब भगवान कृष्ण का आविर्भाव होगा। यानी धर्म में आरूढ़ होना चाहिए, ये सिंबल है, ये प्रतीक है। शिव जी ने घोड़ा क्यों नहीं रखा, साणे क्यों नहीं रखा, साणे माने वो भैंस क्यों नहीं रखा, भैंस किसका वाहन है, यमराज का है। और सबसे बड़े यमराज कौन है, सबसे बड़े यमराज, यमराज का भी यमराज कौन है, मृत्युंजय है। तो उनको तो भैंस का भी बाप रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने भैंस न रखे, बैल रखा, क्योंकि भैंस को कहीं भी धर्म का प्रतीक नहीं माना, बैल को धर्म का प्रतीक शास्त्रों ने माना है। इसलिए जीवन धर्म के आधार में चलना चाहिए, धर्मारूढ़ होना चाहिए है?